हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन कभी नहीं चाहता था कि उसकी प्यारी पत्नी की जान खतरे में पड़े। तारा के घर न पहुँचने पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने पूरे शहर में अपनी गाड़ी दौड़ाई, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं चला। वो थक हार कर माली काका के घर पहुँचा। अमन को लगा कि तारा माली काका से मिलने गई होगी, पर वहाँ जाकर पता चला कि माली काका वहाँ नहीं रहते, वे कहीं चले गए थे। ये बात अमन को अजीब लगी। उसे लगा शायद माली काका का परिवार कुछ परेशान है और उल्टी सीधी बातें कर रहा था। अमन वहाँ ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए फिर शहर में अपनी गाड़ी दौड़ाने लगा। उसने अपने सभी आदमियों को काम पर लगा दिया था। उसने कहा था कि उसे हर कीमत पर तारा चाहिए, लेकिन रात का पहला पहर खत्म हो चुका था, दूसरा पहर चल रहा था और तारा का कहीं पता नहीं चल पाया था। अमन बहुत परेशान हो गया था। करिश्मा जी उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे भी उसे संभाल नहीं पा रही थीं। आज ही तो अमन को तारा से अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ था और आज ही तारा उससे दूर हो गई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद को कोस रहा था कि उसने उसे अकेले जाने की अनुमति क्यों दी थी। करिश्मा जी को भी डर लगने लगा था कि कहीं तारा को किसी काली शक्ति ने अपने कब्जे में तो नहीं ले लिया है। कुछ साल पहले अमन के छोटे होने पर उसके पिताजी भी गायब हो गए थे और उनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला था। तारा का गायब होना उन्हें इसी ओर इशारा कर रहा था कि वो किसी काली शक्ति के हाथों चढ़ गई है। तब अमन ने अपनी माँ करिश्मा जी से कहा, माँ, क्या मैं तारा को ढूंढने के लिए तिलिस्मी पत्थर का उपयोग कर सकता हूँ? करिश्मा जी ने कहा, बेटा, तिलिस्मी पत्थर का उपयोग तुम किसी शक्तिशाली व्यक्ति को ढूंढने के लिए कर सकते हो। तारा एक मामूली लड़की है बेटा, उसके लिए तिलिस्मी पत्थर कैसे बताएगा कि वो कहाँ है? लेकिन माँ, अमन ने कहा, तारा के अंदर भी तो तपस्वी महाराज उसके पिताजी की शक्तियाँ हैं, तो हो सकता है पत्थर बता दे कि तारा कहाँ है। करिश्मा जी सोचने लगी और बोली, बेटा, फिक्र मत कर, तारा बेटी जहाँ भी होगी ठीक होगी। चलो अनुष्ठान में बैठते हैं और तारा का पता लगाते हैं। वे दोनों अनुष्ठान में बैठने ही जा रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन को खुशी हुई, उसे लगा कि शायद तारा लौट आई है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो हैरान रह गया। उसके सामने एक बहुत स्मार्ट लड़का तारा को गोद में लिए हुए खड़ा था। अमन ने उस लड़के की ओर देखा, फिर तारा की ओर। उसने जल्दी से तारा को उसकी गोद से ले लिया और सोफे पर लिटा दिया। फिर वो उस आदमी से गले लग गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा था, अमन का दोस्त। फ्लैशबैक। तारा रोड पर खड़ी होकर ऑटो या रिक्शा का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं मिल रहा था। सड़क पर एकाध ही गाड़ियां चल रही थीं। तारा ने डिसाइड किया कि वो किसी से लिफ्ट ले लेगी, लेकिन उसे कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। शहर में लिफ्ट देने के बहाने चोरी चकारी ज्यादा होती थी, इसी वजह से कोई भी तारा को लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। हालांकि तारा की खूबसूरती को देखकर हर किसी का ईमान डोल रहा था, लेकिन कुछ अनहोनी न हो जाए इस वजह से किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। तारा को गुस्सा आ गया। वो एक सामने से आई ब्लैक मर्सिडीज के सामने जाकर खड़ी हो गई। कोई भी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था और उसे जल्द से जल्द अमन के पास पहुंचना था, इसीलिए उसने अपनी जान पर रिस्क ले लिया और उस काली मर्सिडीज के सामने जाकर खड़ी हो गई। अचानक गाड़ी सवार ने ब्रेक मार दिए, लेकिन तारा ने बेहोश होने का नाटक करने लगी। वो जानती थी कि उसके ऊपर से तो कोई गाड़ी लेकर नहीं जाएगा, इसीलिए वो गाड़ी के ठीक सामने जा लेटी। जल्दी ही उस गाड़ी में से सूट बूट पहने हुए एक स्मार्ट बंदा बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा था, जो कल आने वाला था लेकिन आज ही आ चुका था। जैसे ही उसने तारा को अपनी गाड़ी के सामने देखा, वो हैरान रह गया। उसने तारा को उठाने की कोशिश की, लेकिन तारा जानबूझकर बेहोश थी। उसने कुछ पानी तारा के ऊपर डाला। तारा ने थोड़ा सा होश में आने का नाटक किया। तारा ने अपने घर का पता बताते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ छोड़ आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर तारा फिर बेहोश हो गई। विक्रांत के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एड्रेस समझकर तारा को गोद में उठा लिया और अमन के बंगले की ओर रवाना हो गया। वो समझ गया था कि ये एड्रेस उसके दोस्त का है, लेकिन ये लड़की कौन थी, ये सवाल उसके दिमाग में अटक रहा था। लड़की बहुत खूबसूरत थी। विक्रांत का दिल नहीं कर रहा था कि वो उसे वहीं छोड़कर जाए। फ्लैशबैक। जैसे ही करिश्मा जी ने विक्रांत रंधावा को देखा, तो उन्होंने उसके सर पर हाथ हाथ फेरा और बोली, बेटा ये तुम्हें कहाँ से मिली है? आखिर क्या हो रहा है ये सब? और इसको क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों है? इससे पहले कि विक्रांत को जवाब देता, तारा ने उठने का नाटक किया, मानो वो बेहोशी से उठने लगी हो। अमन उसके पास जा बैठा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तब तक करिश्मा जी एक गिलास पानी ले आई थीं और उन्होंने वो पानी तारा को पिलाया। जल्दी ही तारा पूरी तरह से होश में आ गई। अपने सामने अमन को देखकर वो उसके गले लग गई। विक्रांत सपाट चेहरा लिए उन दोनों को देख रहा था और बोला, कौन है ये मैडम? और अमन, तेरे पास कैसे ये मैडम? जहाँ तक मुझे पता है तू तो लड़कियों से दूर भागता है, तो फिर इस लड़की के लिए इतना बेचैन क्यों है? तारा हैरानी से उसे देखने लगी। उसे तो लगा था कि ये आदमी उसे घर तक पहुँचा देगा, लेकिन वो अमन से इस तरह बात कर रहा था जैसे उसे बरसों से जानता हो। ये विक्रांत है, अमन ने कहा। विक्रांत रंधावा, जिसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज तुम कर रही हो। और विक्रांत, ये मेरी पत्नी है, तारा सिंह राठौर। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है अभी, क्योंकि मैंने अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस नहीं की है, वो भी सिर्फ तारा की सेफ्टी के लिए। फिर अमन सीधा तारा से बोला, कहाँ चली गई थी तुम? आखिर कहाँ थी इतनी देर तक? तुम जानती हो मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हें लेकर। तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने कहा, अमन सर, जैसे ही मैं ऑफिस से निकली, मैंने देखा कि दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई थी और उसमें से जो ड्राइवर था वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। मुझे आपको फोन करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं उसे अस्पताल ले जाने लगी थी। अस्पताल पहुँचाने के बाद जैसे मैं वापस आ रही थी तो मैंने देखा काफी रात हो गई थी और मुझे कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था। मेरा फोन भी उन लोगों की मदद करने के चक्कर में कहीं छूट गया था और जैसे ही मैं रोड पार कर रही थी तब मैं इन साहब की गाड़ी से टकरा गई थी। हल्का हल्का बस मुझे बेहोशी में इनका चेहरा याद था और कुछ नहीं। अमन ने तारा की बात सुनी, उसने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी किसी के मामले में घुसने की? मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो, कोई और नहीं। मुझे तुम्हारी जान सबसे कीमती है। आखिर तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम जानती हो तुम्हें घर पर न पाकर मेरी क्या हालत हो गई थी। अमन तारा को डांटने लगा। विक्रांत अमन की ओर देखकर बोला, बस कर यार, रिलैक्स। उन्होंने बताया तो है कि वो किसी की मदद कर रही थी और मदद करना तो अच्छी बात होती है ना, तो तू इस तरह से मत डांट। खैर, अब जो कुछ भी था, तारा सही सलामत घर आ गई थी। तारा ने अमन से झूठ बोला था, लेकिन उसे ये बात पता थी कि किसी के भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। तारा अमन को सच नहीं बता सकती थी कि वो धरा की मदद करने गई थी, इसीलिए उसने किसी के एक्सीडेंट का बहाना बना दिया था।